ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्मा बेबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम शुभाद परमहंस परिव्राजित आचार्य स्तोत्र श्रोत सुषमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ राश्रम भागवत की ताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं।
और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सको। श्रीमद् भागवतम में वर्णित कथा में पूर्णतया तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसे साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कलमश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमश को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमश बार-बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होना है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री शुक्रदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वैदिक रूप में श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वो श्रीमद् भागवतम को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है, निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्ति वाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि 1 सप्ताह तक भागवत को कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह आजीवन इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके, इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वापर्षक अंग हैं ये त्याग दिया था, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। ओम ज्ञान दिविरादर्श ज्ञान दर्शलाभया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यकं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं साधना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। रक्तकांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आज किसी और का क्लास था, लेकिन मैंने देखा कोई एक बैठा है, मैं इसको समय बैठ जाता हूँ मेरा सत्संग के ऊपर। तो श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसका गुणगान स्वयं शुक्रदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, शुक्रदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की महिमा को सबसे पहले ही गान किया, और फिर जो श्रोता है उसको भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, ग्लोरियस है। तो ये दोनों में परफेक्ट बैलेंस है। श्रोता में और वक्ता में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रोतादेव गोस्वामी बिल्कुल स्थिर हैं, और जो श्रोता हैं परीक्षित महाराज उनको भी इतनी पक्की अंडरस्टैंडिंग थी कि वास्तव में मेरे जीवन में कुछ करने योग्य चीज है क्योंकि मैं मृत्यु के सन्निकट खड़ा हूँ, तो वो एक ही चीज है, वो है श्रीमद् भागवतम को सुनना। इसलिए राजा परीक्षित को सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने सारी चीजों का त्याग कर दिया और श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए निसंकोच रूप से बैठ गए। सारी चिंताओं को, सारी आसक्तियों को त्यागा और वो बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम एक चित्त होकर सुनने के लिए बैठ गए। एक चित्त तभी हुआ जा सकता है या निमग्न तभी हुआ जा सकता है जब हम हमारी भौतिक आसक्तियों को पीछे छोड़ के आते हैं। अभी सुखदेव परीक्षित महाराज यदि इन सब चीजों से बंधे होते हैं या कुछ और आसक्तियों को लेकर बैठते हैं तो बीच बीच में उनको डिस्टर्बेंस होता, फोन कॉल आ जाता, SMS आता, अरे ईमेल चेक नहीं किया या फिर उससे नहीं मिला, उस व्यक्ति का स्मरण हो रहा है, तो बिल्कुल इन सब चीजों को उन्होंने बैठते ही त्याग दिया था। और ये भी नहीं, मृत्यु के भय को भी उन्होंने त्याग दिया था। भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है जैसे उनको पता चला कि मुझे श्राप मिला है उसी क्षण उन्होंने छोड़ दिया सब चीजों को और सरल वस्त्र धारण करके चलने लगे। कहाँ चलने लगे? गंगा के तट पर। उनको पता है कि मृत्यु नजदीक आई है तो मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए? भागवत तुलसी गंगा या भक्त जने, चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत वर्णन करता है कि एक्चुअली कृष्ण का जो विग्रह, कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वो चार चीजों में प्रकट होते हैं, भागवत तुलसी गंगा और भक्त। ये चार चीजों के रूप में कृष्ण सदैव इस जगत में विद्यमान रहते हैं और इन चार चीजों का कोई सेवा करने लगता है तो व्यक्ति का जो जीवन है वो सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है, परफेक्शन प्राप्त करता है। तो परीक्षित महाराज चलने लगे, कई जगह वर्णन आता है कि वो यमुना के किनारे गए, कई जगह वर्णन आता है कि वो गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे जाकर उन्होंने गंगा का आश्रय लिया और साथ ही साथ जो भक्तगण है उनका, और वो चिल्लाते हुए कहने लगे कि अभी मैं बिल्कुल निडर हो गया हूं, मुझे भय नहीं है। किस चीज का भय नहीं है? कि तक्षक सांप जिसमें जिसको पंख है वो उड़ते हुए आएगा और मुझे काट डालेगा और मैं मरूंगा, ये चीज का मुझे भय नहीं है। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, गायतः विष्णु गाथा। हे डिवोटीज, आप क्या करो, विष्णु का गुणगान करो, ग्लोरीफाई करो कृष्ण को, और उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ये वास्तव में लवल्य है श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। यही लवल्य हर एक में है, लेकिन जैसे देवता गण पे जब श्रीमद् भागवतम का लेक्चर शुरू होने वाला था और जो डेमिगॉड्स हैं देवता गण सारे सोचने लगे कि अरे श्रीमद् भागवतम तो अमृत से भी बढ़कर है, हम सुनना चाहते हैं परीक्षित क्यों सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं, इनको मृत्यु से बचना है। तो सारे देवताओं ने अमृत कुंभ लेके आ गए, अमृत का घड़ा, और वो अमृत का घड़ा लाकर सुखदेव गोस्वामी के सामने दिया। कहा देखिए आप तो ये राजा परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हैं, इसके लिए अमृत पिला दीजिए और आप भी चाहे तो थोड़ा पी लीजिए, लेकिन ये जो अमृत रूपी श्रीमद् भागवतम है अमृत से भी बढ़कर ये हमें सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे, उन्होंने कहा भागो यहाँ से, आप योग्य श्रोता नहीं है, आप भौतिक आसक्तियों को लेकर स्वर्ग में उपभोग करना चाहते हो लेकिन निश्चल भाव से बिना किसी कपट आदि से रहित होकर श्रीमद् भागवतम की सुनने की भावना आप में नहीं है। इन्होंने कहा कि यह अमृत से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसको जरूर कहा जाता है कृष्ण कथा अमृत, लेकिन अमृत से भी क्या है कृष्ण कथा सर्वोच्च है, वरणीय है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की महिमा और रेगुलर हियरिंग का जो ग्लोरीज है वो इन श्लोकों में आने वाले श्लोकों में पिछले श्लोकों में स्वयं परीक्षित महाराज हम वर्णन करते हैं और वास्तव में देखा जाए परीक्षित महाराज अपने डेथ प्लान को इस श्लोक में बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपना मृत्यु का प्लान शुक्रदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं। कथयस्व महाभाग कि हे महाभाग परम भाग्यशाली, महाभाग का मतलब है परम भाग्यशाली, फॉर्चुनेट पर्सन। कौन है? शुक्रदेव गोस्वामी। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उनके पास क्या है? कृष्ण कथा रूपी भंडार है, स्टोर हाउस। शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय है कृष्ण कथा का स्टोर हाउस है और वो स्टोर हाउस से अनलिमिटेड बाहर क्या निकल रहा है? कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं निकल रही हैं। तो जिस प्रकार से श्रवणक के आचार्य परीक्षित महाराज हैं, उसी प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी किसके आचार्य हैं? कीर्तनम के। हाँ, चार प्रकार की कीर्तन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। कीर्तन का मतलब है कीर्ति का गान करना, उसे कीर्तन कहते हैं। ग्लोरीज, भगवान की महिमा का गान करना वो कीर्तन है। तो इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी का लाइफ तो परफेक्ट है। क्या क्या परफेक्शन है? कि उन्होंने कृष्ण का गुणगान करना सीखा है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे अपने बारे में अधिक चिंता नहीं है, महामृत मग्न चिंता कि हे कृष्ण महामृत मग्न चिंता, मेरा जो चिंता है वो भर गया है, मग्न हो गया है। किससे मग्न हो गया है? आपका नाम रूप गुण लीला को चांत करना, उसका वर्णन करने की कला मैंने सीख ली है और उसमें मैं मग्न रहता हूं। लेकिन मुझे तो इन मूर्खों की चिंता है जिन्होंने अपना जीवन इंद्रिय, अपने जीवन का जो स्वार्थ है वो इंद्रिय भोग बना लिया है। इस प्रकार से भक्त का जीवन है। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की महिमा को जानते हैं और साथ ही साथ जो श्रोता है परीक्षित महाराज वो भी श्रीमद् भागवत की ग्लोरीज को जानता है और वो उनको अपना मृत्यु का प्लान बताता है कि मैं इस प्रकार से मरना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से मरना चाहता हूँ? कथयस्व महाभाग यतः अखिल आत्मनि, जो अखिल आत्मनि सारे जीवों के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं, जो कौन है? कृष्ण। कृष्णे निवेश्य निसंगः, कृष्ण जो निवास करते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ? अपना जो शरीर है वो त्यागना चाहता हूँ, त्यक्ष कलेवरम, शरीर को त्यागना चाहता हूँ। कैसे त्यागना चाहता हूँ? कृष्णे निवेश्य, कृष्ण में अपने मन, अपने हृदय, अपने चित्त को स्थापित करते हुए, कृष्ण को इंस्टॉल करना। जैसे डिटीज में हम अल्टरनेटिव पर में विग्रहों की स्थापना करते हैं या फिर कंप्यूटर में आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से कृष्ण को अपने हृदय में इंस्टॉल करना, स्थापित करना चाहता हूँ पूर्ण रूपेण और साथ ही साथ निसंगह भौतिक गुणों से मुक्त होना चाहता हूँ। ये मेरा मृत्यु का प्लान है। कितना अच्छा प्लान है, ये कैसे होगा? कथयस्व, आगे कहो। आप क्या करो? आगे कृष्ण के बारे में कहो, रुको मत, हमारा उल्टा है, आगे मत कहो, रुको, बहुत समय हो गया। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज के अंदर इतनी लालसा है और जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, फुल्ली ऑब्जर्व हो जाते हैं कृष्ण में। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य के पहले लाइन में कहते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णित कथा में पूर्णतया तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर सहचार्य प्राप्त करना। कि निरंतर मतलब उस व्यक्ति के लिए जिसने कृष्ण कथा में निमग्न होना सीखा है या जिसका मन चित्त कृष्ण कथा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति सदैव कृष्ण के साथ है, चाहे वो भौतिक जगत में रहे चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, ये दोनों चीज उसके लिए एक है। इसलिए तो वैष्णव का आविर्भाव और उसका तिरोभाव दोनों एक ही है, क्योंकि वो
शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाएंगे तो वहां भी कृष्ण की सेवा करेंगे, वहां भी कृष्ण का गुणगान करेंगे और इस संसार में रहेंगे तभी भी वो कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे और कृष्ण का सदैव अपने जीवा से गुणगान करेंगे। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने कृष्ण के बारे में श्रवण करने की कला को सीखा है या जिस व्यक्ति का हृदय मन कृष्ण कथा में निमग्न हो गया है, ऑब्जर्व हो गया है, वो वास्तव में कृष्ण के बिल्कुल सन्निकट है, सदैव कृष्ण के साथ है। इस प्रकार से कृष्ण कथा में ऑब्जर्व हो जाना, निमग्न हो जाना, ये तात्पर्य बहुत ग्लोरियस है। प्रभुपाद इसमें कहते हैं आजीवन मनुष्य को चाहिए कि आजीवन इसी प्रकार से भागवतम को सुनता रहे जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। तो ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए हमें श्रीमद् भागवतम आदि को सुनना है, नहीं, आजीवन इस कृष्ण कथा को सुनते रहना चाहिए और यही जिज्ञासा यही इच्छा हमें रखनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमें अधिक से अधिक अपना जो मन और चित्त है उसको फुल्ली निमग्न करो कृष्ण कथा में। जिस प्रकार से हमें बारह बार उस लीला को दोहराना, कृष्ण बहुत छोटे थे, इवन भगवान कृष्ण अपनी कथा में निमग्न हो जाते हैं। यशोदा माता जब उनको सुनाती है तो रोज शाम को यशोदा माता कृष्ण कथा करती है, लेक्चर देती है, कहा बेड में जो भगवान सोते रहते हैं। एक्चुअली कृष्ण को उनकी ग्लोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कई वैष्णव टेम्पल में रोज डीडीज को कृष्ण कथा सुनाई जाती है। सच्चिदानंद स्वामी कह रहे थे एक लेक्चर में कि मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, स्टोरी टेलर होते हैं ना, कि कृष्ण कथा को बड़ा अच्छे से सुनाता है, स्टोरी को बिल्कुल बहुत एक्शन और साउंड ऊपर नीचे करना, ऊपर उठाना, इन सब चीजों में वो बहुत एक्सपर्ट है। तो उन्होंने कहा मुझे, मेरी एक सेवा थी जर्मनी में, क्या कि रोज भगवान शाम को सोते हैं, रोज मैं उनको एक लीला सुनाया करता था कृष्णा बुक से या फिर चैतन्य चरितामृत से, तो जिससे वो कहते थे कि जब मैं विग्रह को देखता था तो मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी। एक तो विग्रह के मुख में मुझे हमेशा स्मित हर्ष नजर आता था और मैं भी बहुत अधिक आनंदित हो जाता था। तो कृष्ण भी सुनना चाहते हैं अपने गुणगान को, तो यशोदा माता रोज शाम को ये निश्चित है सुनाया करती थी कृष्ण कथा। नहीं, कौन सी कथा? राम कथा। हम जब वो सुन रहे थे भगवान, तो यशोदा माता ने कहा कि हे बाल कृष्ण, एक महान राजा थे त्रेता युग में जिनका नाम दशरथ था। तो भगवान सुन रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको वनवास में जाना पड़ा। और फिर यशोदा माता ने कहा कि जब सीता देवी का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, इन शब्दों का जब उन्होंने उच्चारण किया तो कृष्ण आगे कमर तक उन्होंने कुछ ओढ़ा था, रजाई या ब्लैंकेट जो भी ओढ़ा होगा, तो कृष्ण तुरंत उठ के खड़े हो गए, बिल्कुल उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, सौमित्रे सौमित्रे वाधनुर हे सुमित्रानंदन, मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक किस भावना में निमग्न हो गया है राम कथा में। और वास्तव में ये बहुत उन्नत स्थिति है कृष्ण कथा में मग्न होना, लेकिन गोल यह है, लक्ष्य यह है। ऐसे नहीं कि पहले जो भक्त थे वो हुआ करते थे, हमारे लिए नहीं है। आज भी महान वैष्णव हमारे बीच में है जिनका हृदय कृष्ण कथा कृष्ण नाम आदि से क्या है, भरा हुआ है और सागर की बातें उनके हृदय से लहरें आती हैं, कृष्ण का गुणगान निरंतर करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये चीजें हमारे लिए नहीं है, हम बने उसी के लिए हैं, कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम बने हुए हैं, कृष्ण कथा आदि में निमग्न होने के लिए बने हुए हैं। लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान राम को भी हम देखते हैं, जब रामायण का वर्णन वाल्मीकि ने लवकुश को सुनाया या सिखाया राम कथा, तो रोज रामायण भगवान राम का गुणगान करते हुए घुमा करते थे छोटे छोटे बालक। और वास्तव में कृष्ण कथा में निमग्न होने के लिए किसी आयु भौतिक क्वालिफिकेशन आने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम कपटता से रहित होने चाहिए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, कापट्य हैले दूर बाढ़े प्रेमेर पूर, हृदय से कपटता दूर हो जाएगी। हाँ, तो ये प्रेम का भगवत आकर्षण की जो बाढ़ है वो हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे बालक लव और कुश कृष्ण का गुणगान राम का गुणगान करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान राम अपने महल में मंत्रियों के साथ बैठे थे, शरण कहाँ से आवाज आ रही है, उनको पता चला ये गुणगान हो रहा है, मेरा ही गुणगान हो रहा है। तो उनको बुलाया और बड़े से सिंहासन में बैठे थे ऊपर जहाँ राजा बैठता है, नीचे लव कुश को बिठा दिया था। लव कुश गान करने लगे कृष्ण कथा का, राम कथा का। तो भगवान राम इतने अधिक तन्मय हो गए उसको सुनने के लिए, अपना पद अपना पोजीशन अपनी स्थिति आदि को भूल गए, और जितना जितना मन उनका आकर्षित हो रहा था उतना उतना वो श्रोता के नजदीक जा रहे थे। जितना निमग्न है हम क्या है, हमेशा दूर रहते हैं, कीप डिस्टेंस, करेक्ट तर्क के पीछे लिखा होता है ना, प्लीज कीप डिस्टेंस। तो वहां भगवान राम को लगा, अरे मैं बहुत दूर हूं, और दूर से भी इतनी तीव्र लालसा उनके हृदय में थी कि वो अपने व्यास बड़े आसन में बैठे थे वहां से उतर गए, नीचे बैठ गए। हाँ, क्योंकि डिफरेंट मर्यादा है कृष्ण कथा को सुनने के लिए। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में कई चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्रकार से नहीं सुनना चाहिए, क्या क्या चीजें करके भागवत क्लास में नहीं आना चाहिए, पूरे लंबे चैप्टर वर्णन किए हैं, क्या एटीट्यूड लेके आना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्लास में करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, फिर सबका वर्णन इन पुराण में प्राप्त होता है। तो भगवान राम को लगा कि ये उचित नहीं है कि श्रोता से मैं ऊंचे स्थान में बैठ के कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, तो कृष्ण कथा का फ्लो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, ऊपर नहीं। तो फिर भगवान राम नीचे बैठ गए, वहां से लगा कि अरे अभी भी नहीं, अभी थोड़ा नजदीक जाना चाहिए। तो वो इतने मग्न हो गए अपनी स्थिति पोजीशन सबको भूल के, सीढ़ियां थी उनके आसन में चढ़ने के लिए, सीढ़ियां थी, नीचे मंत्री आदि का आसन था, वहां सीढ़ियों के आगे वापस बैठ गए, फिर नीचे की सीढ़ी, फिर और नीचे की सीढ़ी, और फिर वहां पहुंचे जहां लव कुश बैठे थे, उनके चरणों में जाकर श्री राम अपनी आंखें एक चक लगा के हुए सुन रहे हैं। किनसे सुन रहे हैं, लव और कुश से, इतना निमग्नता है। तो हमें सोचना चाहिए कि वास्तव में जीवन को मैं अपने जीवन का जो लाइफ है, लाइफ एंड सोल जिसको कहते हैं, वो कृष्ण कथा बनाऊंगा, इससे परे नहीं है, इसमें सारे चीजें इंक्लूड है, चाहे जितना भी हमारे बाकी कार्यकलाप है वो इनमें निहित है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपको गुरु के रूप गुरु के द्वारा श्रद्धा रूपी भक्ति लता बीज मिला है, उसको क्या करो, श्रवण कीर्तन चले कर सेचन, उसको निरंतर श्रवण और कीर्तन के द्वारा सेचन करो। इस प्रकार से भक्त सुंदर हो जाता है, कैसे, श्रवण और कीर्तन वो अधिक से अधिक करने लगता है, उसमें अधिक से अधिक फोकस हो जाता है। राजा कुलशेखर दक्षिण भारत में अनंत पद्मनाभ त्रिवेंद्रम में जो मंदिर है उनमें जो विग्रह है, अनंत पद्मनाभ जो अनंत शेष में सोए हुए हैं और उनके नाभि से पद्म निकला है जिसमें कौन ब्रह्मा है, तो ऐसे अनंत पद्मनाभ बहुत सुंदर विग्रह है, उनका दर्शन करने के लिए आपको तीन दरवाजे से देखना पड़ेगा। पहले दरवाजे में आपको चरण दिखेंगे, बीच वाले दरवाजे में उनका नाभि आगे दिखेगा, आगे वाले दरवाजे में क्या दिखेगा, उनका मुख कमल। तो ऐसे अनंत पद्मनाभ त्रिवेंद्र में ये राजा कुलशेखर के विग्रह है, कुलशेखर का लाइफ है। तो उस समय केरला के राजा थे कुलशेखर और उनकी एक बेटी थी। तो राजा कुलशेखर हमेशा श्रवण करते थे रंगनाथ के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो उनको लगता था कि कब मैं भागू भगवान रंगनाथ की सेवा के लिए। तो राजा कुलशेखर जब केरला में थे वहां अनंत पद्मनाभ की सेवा करते थे रोज सुबह शाम, तो उस समय हर राम कथा को सुना करते थे, उनका ऑफिस में कुछ और चलता ही नहीं था, ऑफिशियल कार्य में क्या था, यही था। एक वैष्णव आता था और वो रोज रामायण से उनको सुनाया करता था और वो मग्न हो जाते थे। तो कभी कभी जब राम कथा का वर्णन करते हुए जब जो स्पीकर है वो वर्णन करता था कि भगवान और वनवास में गए हैं, तो बहुत दुखी हो जाते थे, इतना दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे। अरे भगवान के तो मृदु चरण कमल है, हाँ उनके साथ सीता महारानी है, किस प्रकार से वो जंगल में भ्रमण कर रहे होंगे, वहाँ भोजन के लिए कुछ नहीं होंगे, ऐसे घास की कुटिया में रह रहे होंगे। तो ये सब मन इस प्रकार से क्या करते, इसको कहते मननम। क्या है मननम? मननम करते हैं तो हम प्यूरिफाई हो जाते हैं बहुत अधिक। तो ऐसे दुखी हुआ करते थे। और कभी कभी जब अपहरण आदि का वर्णन आता था कि सीता का अपहरण किया है, तो ये पूरा भाग निकलते थे, कहते थे कि चलो सेना को इकट्ठा करो और अभी हम उस आसुर का वध करके वापस आ जाएंगे। लेक्चर के बीच में वो भाग पड़ते थे बाहर, सबको ऑर्डर देते हुए सेनापति और सारी सेना तैयार होके वो ले जाते थे और चलते जाते थे सेना को लेकर। फिर मंत्री किसी को और आगे भेजता था, वो व्यक्ति आगे से आता था, बोलता था महाराज अभी रावण का वध हो गया है, अभी वापस चलिए। तो राजा चंद्रशेखर वापस आते थे। तो सब मंत्रियों ने सोचा इस प्रकार से रोज होता रहेगा तो हमारे राज्य की दुर्दशा हो जाएगी। तो उन्होंने जो स्पीकर था भागवत स्पीकर या राम कथा का स्पीकर, उनको कहा कि पंडित जी आप केवल यही वर्णन कीजिए कि अयोध्या में रोज उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। तो अयोध्या का वर्णन करते थे कि रोज फेस्टिवल हो रहा है, कृष्ण राम का गुणगान हो रहा है, रंगनाथ ये जो विग्रह है भगवान राम के वर्षिपेबल जीटी हैं, तो ये विग्रह वहां थे अयोध्या में। तो ये सब हमेशा फेस्टिवल का वर्णन करते थे। तो राजा फिर फेस्टिवल मनाता था हर रोज फेस्टिवल। तो एक दिन जो स्पीकर है कथा वाचक वो बीमार हो गए, उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बेटे को बताना भूल गया कि क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक क्या है आज के लेक्चर का। अभी वो गया, उसको पता नहीं था कि श्रोता किस लेवल के है, उनको राजा श्रोता का लेवल पता नहीं था, ये सब चीजें पता नहीं थी, नया नया पहली बार क्लास देने जा रहा था। उनका बेटा गया और उनको लगा समथिंग एक्साइटिंग श्रवण कराता हूँ कि राजा बिल्कुल भवावेश में आ जाए, हमें लगता है कि ऐसा क्लास देता हूँ कि सारे ना पूरे दिन सोचते रह जाए कृष्ण के बारे में नहीं मेरे बारे में। वक्ता है तो यहाँ वो जो वक्ता है वो गए, उनके जो पुत्र थे उनको लगा रामायण से कुछ स्पेसिफिक रीडिंग करेंगे। उन्होंने रामायण को खोला और खोलते उन्होंने निकाला सीता देवी का अपहरण, किस प्रकार से वो आए रावण और सीता को उठा के ले गए विमान में डाल के और ये सब वर्णन पढ़ने लगे। तो जैसे जैसे उस कथा का वर्णन करते जा रहे थे वैसे वैसे राजा कुलशेखर जिन्होंने मुकुंद माला का वर्णन लिखा है, मुकुंद माला ग्रंथ लिखा है, तो राजा कुलशेखर इतने भावावेश में आ गए उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अपने तलवार निकाली और आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि हे महामंत्री सारी सेना को लेकर तैयार हो जाओ, अभी हम महासागर को पार करके हम रावण का वध करने के लिए जाएंगे, जिन्होंने माता सीता का अपहरण किया है उनको हम लेके आएंगे, मेरे आंखों के सामने सीता देवी का अपहरण कैसे हो सकता है। तो ये गए बाहर निकल पड़े अपने घोड़े पर रथ पर बैठे दौड़ते दौड़ते, अब देखो रामेश्वरम में आ गए थे, त्रिवेंद्रम में उनका राज्य था, वहां से अब कार से जाते हो कन्याकुमारी से रामेश्वरम बहुत दूर है, वहां से पूरे आपको 7-8-9 घंटे लगते हैं। तो पूरा ये दौड़ने लगे रथ के ऊपर और अभी पहुंच गए कहां समंदर के किनारे, और देखा कि यहाँ लंका है, 18 किलोमीटर सामने लंका है रामेश्वरम से, उन्होंने कहा जरूर अभी इसको पार करके गया है। फिर उन्होंने रथ से उतरे तलवार निकाला और जल में चलने लगे, श्री राम नाम का वर्ण राम का नाम लेते हुए और किसमें मग्न है कृष्ण कथा में, इतने निमग्न हो गए हैं राजा कुलशेखर। और वो गए जल में गए, वो डर नहीं लग रहा है कि अरे अभी मैं घुटने तक पानी आ गया है बस हो गया, हाँ या फिर छाती नहीं, यहां तक जल आ रहा था, समंदर में वो चलते जा रहे थे। हाँ, इतना आकर्षण प्रभाव भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, और इतनी निमग्नता थी, इतना ऑब्जर्व हो गए थे। हम थोड़ा सा भी हमें कुछ कर लेता है तो हम बिल्कुल हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ जब वो पानी में घुस गए तो भगवान राम हंसने लगे। भगवान राम पीछे से आए और ना राजा कुलशेखर का आलिंगन किया। अरे कुलशेखर, आपको इतना आसक्ति मेरे कीर्तन मेरे गुणों को सुनने के लिए, तुम इस सागर को पार करने का क्या सोचते हो? मैं तो तुम्हें बहुत सागर से पार करूंगा। भगवान राम उनका आलिंगन किया और वही है ना कि हमेशा क्या है, कृष्ण निवेश, कृष्ण उसके उसमें निवास करने लगते हैं। तो हमेशा जो व्यक्ति कृष्ण कथा को श्रवण करता है वो हमेशा कृष्ण के सहचर्य में होता है। इसलिए पद्म पुराण कहता है, श्रोत्राभ्याम करचेत कृष्ण गुण नामानि अहर्निशः। तो वहां पद्म पुराण में अलग अलग इंद्रियों का वर्णन आता है, तो उनमें जब कान का वर्णन आता है तो वहां कहते हैं श्रोत्राभ्याम करचेत कृष्ण गुण नाम, कि ये जो श्रोत्र है कान है इससे कृष्ण के गुण नाम उनकी लीला आदि को सुनना चाहिए। कहते कब सुनना चाहिए? अहर्निशः, दिन भर और रात्रि भर को कहते हैं। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं कि शयने कि किवा जागरणे अहर्निशः बलह कृष्ण बलह बदने। अरे क्या सोते हुए, खाते हुए, जगते हुए क्या करो दिन रात? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये निमग्नता लाई जा सकती है जब हम दृढ़ हो, फिक्स हो कि मुझे कृष्ण कथा को श्रवण करना है। क्योंकि हमें हम खुद स्टेप नहीं उठाएंगे तो इम्पॉसिबल है। हम भजते माम दृढ़ व्रता, हमें दृढ़ होना होगा कृष्ण कथा को पीने के लिए। जितना कृष्ण कथा अंदर जाएगा उतना ही हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित होने लगेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं हनुमान ने जब वापस आ गए सारे लोग लंका से अयोध्या, तो भगवान राम वो देख रहे थे, प्राइज गिविंग सेरेमनी हो रहा था। आप सबने बड़ा युद्ध किया, मैराथन था उनका युद्ध का, है ना, कितना बड़ा लंबा मैराथन था। सारे छोटे छोटे वानर सेना, हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, लेकिन यहाँ पूरा अपना लाइफ देना था भगवान राम के लिए। तो सारे बंदर तत्पर थे सेवा में। तो वापस जब आए भगवान बहुत अधिक ऋणी हो गए थे बंदरों का। भगवान ने कहा मैं आपका ऋण कैसे अदा कर सकता हूँ आपकी इन सेवाओं के द्वारा? आप लोगों ने, क्योंकि संसार में सबसे प्रिय किसी को है कुछ है तो अपना शरीर है। कोई किसी को अपना शरीर देना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए अपना शरीर त्याग करना नहीं चाहता। दधीचि मुनि जब वत्रासुर का वध करना था, चित्रगुप्त जो राजा वत्रासुर बड़े थे, तो इंद्र को कहा कि इम्पॉसिबल है इनको मारना, आपको क्या करना होगा, दधीचि मुनि के हड्डियों से वज्र बनाना होगा और उस अस्त्र के द्वारा वत्रासुर का मृत्यु हो सकता है। तो फिर इंद्र आदि देवता दधीचि मुनि के आश्रम में गए और दधीचि मुनि के पास गए कि मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। क्या चाहिए आपसे? हम तो किसी से कुछ मांगते धार्मिक, थोड़ा सा कुछ लक्ष्मी दे दो या कुछ आपका टाइम दे दो, हम कुछ और उनका शरीर से हम मांग करते डिमांड करते। लेकिन यहाँ ये नहीं कि आपका कुछ कुछ सर के बाल दे दो, हमें अपने सर के बाल भी मांगे जाए तो हमारे लिए कितना कठिन है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ दधीचि मुनि के पास देवतागण आए और उन्होंने मांगा कि हे महामुनि हमें तो आपकी हड्डियां चाहिए। हड्डियां चाहिए क्या करना होगा? पहले आपको शरीर को त्यागना होगा तब हड्डियां दे सकते हो। कितना उन्होंने कहा वास्तव में ये शरीर तो मांस हड्डी मल मूत्र गंदगी से भरा पड़ा है। इस शरीर में 9 holes है, 9 द्वार है और उनसे कुछ अच्छी चीजें नहीं बाहर आती, सारी गंदगी बाहर आती है। और ये वैसे नाशवान शरीर है जिससे हम इतना प्रीति इतना आकर्षण हमारे इस शरीर से रखते हैं, इतना प्रेम हम करते हैं, लेकिन यह शरीर यदि दूसरों की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यह शरीर पशु आदि के समान है। तो उन्होंने कहा, वो फिर काफी चीजें उन देवताओं को बोलते हैं, वो अच्छा एक लेक्चर देते हैं इसके ऊपर, अनासक्ति के ऊपर, और फिर वो तत्पर हो जाते हैं अपना शरीर का विनाश करके क्या करते हैं, हड्डियां प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वानर सेना है, इन्होंने अपना लाइफ दिया था भगवान राम के लिए कि नहीं? वहां तो रावण के सेना के साथ युद्ध करना मीन्स मरना ही है, लेकिन फिर भी भगवान राम के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये शरीर किसका प्रॉपर्टी है, भगवान श्री राम का, गुरु का प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से वानर सेना पूर्ण समर्पित थी और भगवान राम ने उनका डेडिकेशन देखा, समर्पण देखा, भगवान राम कभी भूले नहीं। वो वापस आए, बहुत बड़ा जल्लोष मनाया अयोध्या में, फिस्ट हुआ और बहुत अच्छे अच्छे, और इनको कहा, हनुमान को कहा, आप मेनू बनाओ, क्या क्या बनाया जा सकता है, आप मेनू बनाओ। तो हनुमान ने जो बंदरों को अच्छा लगता है, वैरायटीज ऑफ फिस्ट बनाया, उसमें छोले भी रखे थे, क्या रखे थे, छोले। अभी भगवान राम को सोचा, भगवान राम जैसे कोई सीनियर डिवोटीज है, सन्यासी से वो चलते हैं, आप जब प्रसाद देते देखते हैं उनके से खा रहा है, कोई कमी तो नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हैं, हर एक के एटीट्यूड को देखते हैं। तो भगवान राम ने कहा, चलो हनुमान राम जरा घूम के आते हैं कि ये सारी वानर सेना कैसे प्रसाद ले रही है। तो वहां जब उस अभी अब हजारों लाखों के उससे वानर सेना थी, तो कितना बड़ा प्रसाद माहौल होगा, वो अपने बैठे थे प्लेट हाथ में लेकर, उनके लिए तो बड़ा टफ था, सिटी लाइफ का जो स्टाइल है भोजन का, अच्छा हुआ चम्मच आगे नहीं थे। तो उन्होंने प्लेट्स में वो चने देखे, अरे इसको कैसे खाएगा, तो फिर कुछ और सोच नहीं रहा था, तो ऊपर उड़ा लेते थे, कैच करते थे मुंह में। तो भगवान राम उनके कार्यकलापों को देख के, जैसे कि वो नाच रहे खाने रहे, भगवान राम बहुत आनंदित हुए। अभी सीता देवी बाद में आती है, हनुमान को अप्रोच करती है, हनुमान को कहती है कि आपने तो इतनी अधिक सेवा की है, और आप वास्तव में मुझे ढूंढ निकालने में आपका सर्वोच्च सबसे बड़ा सहयोग है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप लंबा जीवन प्राप्त करें, हाँ चिरंजीवी भवो, क्या भवो, चिरंजीवी, चिरंजीवी जीवित रहो चिरकाल तक, लंबे समय तक। इतने दुखी हो गए हनुमान, रोने लगे, हे माता सीता आपने तो मुझे शाप दिया है, ये लंबा आयु लेकर क्या करना है इस संसार में, ये मैं बहुत दुखी हूँ, इस प्रकार का आप मुझे शाप दे रही हो। इन्होंने कहा, सारे जगत के लोग तो जीवित रहना चाहते, कौन मरना चाहता है, हर एक सोचता है कि मैं लंबा जीवित रहूं, लंबी जीवित रहूं, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए जीवन प्रदान कर रही हो, कि तुम कह रहे हो कि आप मुझे श्राप दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, ऐसे लंबे जीवन का क्या लाभ, जिस लंबे जीवन में मैं भगवान राम की कथा को सुनने से वंचित रह जाऊं, तो ऐसा लंबा जीवन भी मुझे नहीं चाहिए। वो कहते कि कुछ आप मुझे देना ही चाहती हो तो ये आशीर्वाद प्रदान करो कि मैं मेरे पूर्ण जीवन भर, हाँ उन्होंने कहा, मैं इस जगत में तब तक निवास करना चाहता हूं जब तक भगवान राम का गुणगान इस पृथ्वी में होता रहेगा, और उस गुणगान को मैं श्रवण करूं, मैं हमें बस कुछ और नहीं करूं, अभी जो भी करना था वो कर लिया मैंने, युद्ध अभी जो करना था, अभी जो जीवन शेष है उसमें क्या करना चाहता हूं, भगवान राम की सेवा, वो कैसे उनके गुणों को सुनना, क्योंकि कौन व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष है, वो कभी भी श्रवण करने की लालसा उसके हृदय में नहीं होगी। कानों से किसी का गुणगान, केवल भक्तों का गुणगान, कृष्ण का गुणगान उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, अनसूयवे, अनसूयवे, ईर्ष्या रहित होकर सुनो, क्योंकि भगवत गीता का धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन भगवत गीता कानों में नहीं चली गई, क्यों,
दुर्योधन का वो संत रहा था। दुर्योधन एक ईर्ष्या का मूर्तिमान स्वरूप है, द्वेष का मूर्ति है दुर्योधन। भगवान के प्रति द्वेष, भक्तों के प्रति द्वेष, भगवान के प्रति ईर्ष्या, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, जिसके कारण कृष्ण कथा, कृष्ण वचन, भक्तों के वचन कान में नहीं घुसते, वो ब्लॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं बहुत ही जगत में हमें किसी व्यक्ति या भक्त से थोड़ा सा तनाव है या अच्छे नहीं लगते, तो कोई भी उसका उसकी सेवा का गुणगान करता है तो हमें जलन होने लगती है, नहीं हम कुछ ऐसा बोलते कि स्टॉप करते हैं उसकी गुणगान को। तो इसी प्रकार से जब ये ईर्ष्या और द्वेष आदि की भावना है उस व्यक्ति के हृदय में, कभी भी कृष्ण कथा प्रवेश नहीं करेगी। वो चाहे हजारों भागवतम क्लासेस अटेंड करे, हजारों भागवतम सप्ताहों का वर्णन कर ले, लेकिन ना उसके हृदय में कृष्ण कथा या कृष्ण प्रविष्ट होंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए उन्होंने हनुमान ने कहा कि मैं सदैव भगवान श्री राम का गुणगान को सुनना चाहता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। रीडिंग करना रेगुलर, वो भी क्या है, सुनना है कृष्ण के बारे में, और भक्तों के द्वारा सुनना वो अति उत्तम है, सर्वोच्च चीज है। शुकदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज ने कहा कि नया भागवत का वर्जन कौन सा प्रिंट हुआ है, एडिशन कौन सा आया है, मैं रीडिंग करता हूँ। श्रीमद् भागवत को क्या करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, नहीं जाके क्या क्या उन्होंने श्रवण किया। तो दोनों चीजें एक है, हमें श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, इनको अच्छे से रीड करना चाहिए इन ग्रंथों को, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कृष्ण के हमेशा निकट रहोगे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है ब्राह्मण पत्नियों का। वो ब्राह्मण पत्नियों ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था। कृष्ण और बलराम जब गवे या बछड़े चराने के लिए गए थे तो उनको भूख लगती है, तो उनके मित्रों को भूख लगती है, वो भेजते कि जाओ नजदीक एक गांव है जहाँ ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओ उनसे मांगो कि कृष्ण और बलराम कुछ मांग रहे हैं भोजन। तो ये यज्ञिक ब्राह्मण उनके पास वो गए बार बार, उन्होंने मना कर दिया, भागो यहाँ से। लेकिन फिर वो वापस आए दुखी होकर, बाल बाल उन्होंने कहा अभी क्या करो, उनके पत्नियों के पास जाओ। ये गए पत्नियों के पास, उन्होंने कहा कृष्ण बलराम नजदीक के ही वनों में हैं और वो भूखे हैं और उनको भोजन के लिए कुछ चाहिए। तो जो यज्ञों में अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए थे यज्ञ पत्नियों ने, वो सारे बड़ी बड़ी प्लेटों में भर दिए। ये नहीं कहा कि आप लेके जाओ, वो खुद जाने के लिए तत्पर हो गए। सारी यज्ञ पत्नियां, वो स्त्रियां जिनको कृष्ण से इतना आकर्षण था, कृष्ण तो छोटे से बालक थे, वो सारी यज्ञ पत्नियों ने बहुत वैरायटीज के अलग अलग पदार्थ अपने सुवर्ण थालियों में भरे और अपने सर में लेकर एक के पीछे एक चलने लगी ग्वाल बालों के साथ, और वहां गए तो कृष्ण के मुख कमल को देखा। कृष्ण को उन्होंने वो सारे चीजें अर्पित की और उन्होंने कहा कि हम अभी यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती, हम तो आपके संग में ही निवास करना चाहती है, हे कृष्ण हे बलराम। कृष्ण बड़े सीरियस हो गए, कृष्ण ने कहा ये सीरियस बिजनेस है, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे सन्निकट मेरा निरंतर सहचर्य या संग प्राप्त करना चाहती हो तो एक ही चीज है। कृष्ण कहते, कृष्ण कहते हैं श्रवणात् दर्शनाद्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। हे यज्ञ पत्नियों वापस जाओ, और मैं आपको ये कहता हूँ मेरा सहचर्य मेरे साथ हमेशा निवास करना है, या मेरी नजदीकता केवल इसी चीज से आती है। क्या है, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, मेरे बारे में निरंतर श्रवण करना, मेरा निरंतर दर्शन करना, मेरा निरंतर स्मरण ध्यान आदि करना, भावानुकीर्तना, और मेरा गुण जो मेरे हैं, मेरी लीलाएं हैं, मेरा नाम है, उनका गान करो, उनका वर्णन करते रहो, न तथा सन्निकर्षण,
इससे बढ़कर निकटता मेरे साथ और कोई नहीं है, इससे बढ़कर निकटता नहीं है। तो हम सोचते हैं कि कृष्ण के नजदीक खड़ा हो जाता हूँ विग्रह के, हमें लगता है कि पुजारी सबसे नजदीक है ना, मैं तो बहुत दूर हूं। लेकिन वास्तव में आप कृष्ण के सबसे नजदीक हो सकते हैं जब आप क्या करोगे, अपने आप को मग्न करोगे कृष्ण का वर्णन करने में, कृष्ण के बारे में सुनने में, कृष्ण का ध्यान आदि करने में। उससे कृष्ण यज्ञ पत्नियों को कहते हैं कि इससे बढ़कर नजदीकता कोई और नहीं है, तो ये गौर है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां जहां मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं वहां वहां मैं निवास करता हूँ। तो ये सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन का, ये रहस्य है। तो इस प्रकार से युवा जो रुक्मिणी देवी है वो भी कैसे 16,198 की सर्वश्रेष्ठ भार्या भगवान की निकटता को कैसे प्राप्त किया, एक ही गुण। उन्होंने क्या गुण था उनमें, केवल नारद मुनि जब वर्णन करते थे तो ये बिना कपटता के बस बैठी रहती थी अपने पिता भीष्म के साथ और निरंतर भगवान के गुणों को सुनती रहती थी। और जब उनको पता चला कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने वाला है तो उनका हृदय दुख होने लगा, जलने लगा। उन्होंने क्या उपाय करो, क्या उपाय करो, क्योंकि श्रवण करने मात्र से उन्होंने अपना मन, अपना हृदय, अपना शरीर कृष्ण को समर्पित कर दिया था, कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किया था। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, श्रवण के द्वारा इतना अधिक आसक्ति कृष्ण से उनको हो गए थे कि अपना हृदय किसी और को देने के इसमें नहीं थे, इच्छुक नहीं थे, दे नहीं पा रहे थे किसी और को कृष्ण के अलावा। क्यों? क्योंकि कृष्ण से उनके कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रगाढ़ आसक्ति हुई थी केवल श्रवण करते हुए। और फिर उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुलाया, लेटर लिखा हमको, कृष्ण को एक लेटर लिखा, भागवतम का वो पहला प्रेम पत्र है। लेकिन उसकी शुरुआत क्या है, रुक्मिणी पहले लाइन में लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतांते निर्विध्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम। वो कहती है कि हे कृष्णा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कि आपके जो गुण है इतने सौंदर्यवान है श्रवण करने के लिए, शुण्वतांते निर्विश्व कर्ण विवरे हरतो अंगतापम, कोई व्यक्ति इसको सुनेगा तो उसकी अंगताप, शारीरिक जो कष्ट है, अंगताप, ताप का मतलब क्या है, फीवर, वैसे हम तप रहे हैं इस संसार में, तो यहाँ एक मेडिसिन बता रही है, दूसरे प्रकार से हम इसको लेंगे तो रुक्मिणी देवी बुखार के ऊपर एक मेडिसिन बता रही है। क्या है मेडिसिन, श्रुत्वा गुणान, कृष्ण के गुणों को सुनो, हरतो अंगतापम, सारे अंग का जो ताप है उसका हरण हो जाएगा। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयाचुत विशति चित्तम अपरप्रमेय। वो कहते कि मैंने अपनी लज्जा को त्याग दिया है, मैंने लज्जा को त्याग कर अपना मन अपना चित्त आप में लगा दिया है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि आपके गुण इतने मनोहर है कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। इवन शुकदेव गोस्वामी के हृदय में भौतिक संसार के लिए किसी से भी आकर्षण नहीं था, इवन वो ब्रह्म में मग्न थे, भगवान के रूप आदि के प्रति नहीं, लेकिन जब भगवान के गुणों को उन्होंने सुना, दो श्लोकों को सुना श्रीमद् भागवतम के, एक तो भगवान के सौंदर्य के बारे में और दूसरा श्लोक था भगवान के दया के बारे में, ये दो गुणों को जब सुना तो शुकदेव गोस्वामी ने अपना जो ब्रह्म के प्रति निराकार ब्रह्म के प्रति जो आकर्षण था उसको त्याग कर दिए और दौड़ते हुए व्यासदेव के पास वापस आए। और व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम उनको प्रदान किया और जिसके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवतम आगे शुक्र परीक्षित महाराज आदि में वितरण किया। इस प्रकार से कृष्ण में मन लगाना बहुत सरल है, लेकिन हम अपने हृदय में सरल वृत्ति को धारण करके भगवत भक्ति का जो सबसे सरल अंग है
हम उसको हम स्वीकार करेंगे तो भगवत भक्ति कृष्ण में निमग्न होना सरल हो जाएगा। हाँ अति कठिन नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हम कठिन बना लेते हैं भक्ति में जीवन। एक प्रिंसिपल को उठाओ उसके पीछे लग जाओ, क्या जैसे ना कोई किसी के पीछे लग जाता है, तो वैसे ही है भक्ति के नौ अंग है, हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो बाकी तो ठीक है आगे वाले, लेकिन कलियुगा में दो प्रमुख है श्रवणम कीर्तनम, इनके पीछे लग जाओ। क्या करना है, पीछे लगना है, छुट्टी नहीं, फिर आप वंडरफुल रिजल्ट अनुभव करोगे। और भक्त उसी के लिए है, हाँ हमारा लाइफ किसके लिए है, कृष्ण के पीछे लगने के लिए है। कृष्ण का पीछे पीछा करना मीन्स क्या करना, श्रवणम कीर्तनम, इसका पीछा करना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं है, तभी फिर हम निमग्न हो सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए हम दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहे हैं, नहीं तो हम सपने देखते रहेंगे कृष्ण भक्ति में। हाँ अच्छा जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, दो प्रोग्राम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं चल रहा है। हमेशा समस्या तो यही रहती है, सारे समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है। हाँ जैसे हमारा श्रवणम कीर्तनम ढीला होता है, आध्यात्मिक जीवन ढीला होने लगता है। इसलिए भक्त चाहे वो साधक हो या जिसने परफेक्शन प्राप्त किया है, दोनों एक ही कार्य करते हैं। साधना में है वो दृढ़ता से श्रवण कीर्तन करता है, और जिसने भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया है वो उतना ही अधिक आनंद अनुभव करता है कृष्ण का गुणों का वर्णन करने में और कृष्ण के बारे में श्रवण करने में। किस प्रकार से एक छोटा सा कार्य है श्रवणम, हाँ लेकिन एक महान फल हमें देने वाला है। किस प्रकार से इसको गंभीरता से हमें स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में। और इसलिए तो नित्यम भागवत सेवया, ये श्लोक लेक्चर के पहले ध्यान पूर्वक उच्चारण करने के लिए नहीं है, असली उसका उच्चारण क्या है कि उसको अप्लाई करो कि अधिक से अधिक हमें किस प्रकार से हम कृष्ण के बारे में सुनो। तो जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा का विकास होता है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं श्रद्धा का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति या इस प्रोसेस आदि के प्रति। तो पांच स्टेप की विधि शास्त्र देते हुए कहते हैं कि हमें कृष्ण के प्रति प्रधान श्रद्धा को जागृत करना है, और इस भावना को अपने हृदय में स्थापित करना है। श्रद्धा शब्द कैला दृढ़ क्या है, श्रद्धा शब्द कैला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा का नाम है दृढ़ विश्वास। क्या दृढ़ विश्वास, मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी का ऋणी नहीं हूं जगत में। गतो मुकुंद परिहर के कृता, मैं मुकुंद की शरण ग्रहण करूंगा तो इस संसार में मुझे किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना का दृढ़ता से हृदय में स्थापना होना, तो ऐसे दृढ़ता को लाने के लिए या श्रद्धा को जागृत करने के लिए फिक्स क्या करना चाहिए, सबसे पहले है कि हमें भक्तों के संग में आना चाहिए। और भक्तों के संग में आकर हमें श्रवण करना चाहिए, उसको कहते हैं जनरल हियरिंग। और वो क्या है, फिलोसफी, पुनर्जन्म, मटेरियल वर्ल्ड का वर्णन, कैसे ये ताप आए हैं, त्रिगुण कैसे बांध रहे हैं, इन सबको सुनना। इससे क्या होगा कि एक प्रकार का जो फेथ है वो जागृत होता है और उसमें हम स्थित हो जाते हैं। और इतना ही इनफ नहीं है, उससे आगे जीव गोस्वामी कहते हैं कि ट्राई टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कृष्णा। उसके आगे क्या है, कृष्ण के बारे में आप अंडरस्टैंड करना शुरू करो। इसलिए तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक दिया है, कि आप रोज कृष्णा बुक को पढ़ो, क्योंकि उतना इनफ नहीं है। सेकंड क्या है कि अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाना, श्रवण करना, पर्टिकुलरली भगवान कृष्ण के बारे में,
कि वो किस प्रकार से
हाँ उनके अलग अलग गुण है, किस प्रकार से कृष्ण के कार्यकलाप है, किस प्रकार से जो कृष्ण है सदैव अपने भक्तों के रक्षक है। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम में रिपीटेडली एक ही चीज का वर्णन आता है, क्या है कि कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भागवतों के पहले स्कंध से लेकर अंत तक रिपीटेडली एक ही चीज, हाउ कृष्ण इज प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज। तो ये जब हम स्पेसिफिक ये अंडरस्टैंड करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो हमारा फेथ स्ट्रांग हो जाता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं टेक शेल्टर ऑफ शरण गुरुज, शरण गुरुज, गुरुज है एक प्रकार के गुरुज है, शरण गुरुज के द्वारा हम श्रवण करें, भक्तों के द्वारा सुने हम रेगुलरली। और चौथी चीज वो कहते हैं कि श्रवण जब हम करते हैं सीक्वेंस में हमें फिर मनन करना चाहिए, चौथी चीज है, क्योंकि मनन जो सुना है उसके ऊपर हम चिंतन करें अलग अलग एस्पेक्ट्स है तो क्या होगा और हम फिक्स हो जाएंगे। और फाइनली है कृष्ण को प्रार्थना करना कि हे कृष्ण हाँ मेरे हृदय में ये श्रद्धा का विकास करने दीजिए, श्रद्धा को बढ़ाइए। इस प्रकार से इजी फॉर्मूला आचार्य जी बताते हैं और इसको जब हम पालन करते हैं तो सरलता से हम कृष्ण के प्रति जो तीव्र आकर्षण है हम उसको विकसित कर सकते हैं। इस श्लोक में दूसरा जो पॉइंट था शायद हो गया है, पहला ये था कि निमग्न कर देना चाहिए हमें अपने आप को, और दूसरा है कि जो परीक्षित महाराज इस श्लोक में अपना मृत्यु का प्लान बता रहे हैं कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ, अरे परम आवश्यक है अपनी चिंता करना कि हाँ इस प्रकार से मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ, हम कैसे त्यागना चाहता हूँ। शुक्रदेव गोस्वामी आपसे सुनते हुए और अपने मन को कृष्ण में स्थिर करते हुए भौतिक दूषणों से मुक्त हुए त्यक्ष कलेवरम शरीर को त्यागना चाहता, और कृष्ण यही चाहते हैं प्रभुपाद चाहे अकेले हो वो हमेशा गाया करते थे, वो क्या था राजा कुलशेखर का श्लोक कृष्ण त्वदीय पद पंकज मंजरांतम आपके चरण कमल के समान है और मेरा मन हंस के भांति है, और जो हंस है जल में जब विहार करता है तो जो कमल की नाल है डंडल होते हैं उनमें वो हमेशा अपने आप को लगाता है, उसमें अपने आप को बंदिश करना चाहता है, उससे उसको आनंद अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से मेरा जो मन है वो आपके चरण, मेरा हंस रूपी मन आपके चरण रूपी कमल रूपी जो चरण है उनमें निमग्न हो जाए, अभी निमग्न हो जाए। क्यों अभी? क्योंकि अभी मेरा मन सरलता से आप में लगा हुआ है, लग सकता है, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा जब मृत्यु का समय आएगा तब क्या होगा कफवात पित्ते मेरा गला रुंध जाएगा, चौकफ हो जाएगा, कफवात पित्त आदि से स्मरण आपका स्मरण में कैसे कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तो इस प्रकार से हमें सदैव प्रेयर्स करने चाहिए भगवान को। तो ये डेथ प्लान परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। हम भीष्म भी अपना मृत्यु का वर्णन करते हैं, इस प्रकार से वो मरते हैं, इस प्रकार से शरीर त्यागते हैं, इंतजार करते उत्तरायण का, और सामने और पहले वो लेक्चर देते हैं किनको, पांडवों को, कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं, और फिर कृष्ण स्वयं उनके चरण कमलों के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यही है वो परम भगवान जो आपके लिए दूत बने हैं, आपके लिए अलग अलग रोल उन्होंने अदा किए हैं। ऐसे कृष्ण जो श्याम वर्ण के हैं जो गोपीनाथ हैं उनको देखकर मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तो भागवतम में वर्णन आता है विष्णुदेव भगवान के मुख कमल को देखते हुए हैं अपने शरीर का त्याग करते हैं। इवन जैसे परसों भी कह रहा था सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी वृंदावन से निकले चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, तो वो जाते जाते अपना डेथ प्लान बोलते जा रहे थे कि वृंदावन जाऊं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथ को देखूंगा, रथ के ऊपर वो निवास बैठे हुए हैं और सामने चैतन्य महाप्रभु होंगे, उनको देखकर अपने शरीर को जगन्नाथ रथ के पहियों के नीचे त्यागना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी की अभिलाष, और हमारे अभिलाषा क्या है, मोर यही अभिलाष विलास मुझे दिव्यवास। तो ये अभिलाषा है, इस प्रकार की इच्छा को हम सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। रामानुजाचार्य ने भी उनके जो डिवोटी थे गोविंद, उन्होंने भी इच्छा की और वैसे उन्होंने शरीर को त्यागा। उन्होंने जो गोविंद थे उनके गोद में अपना सर रखा और उनके एक शिष्य थे अंद्रपूर्ण, अंद्रपूर्ण के गोद में अपने चरण कमल रखे। दो महावैष्णव के गोद में शरीर त्यागना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। एक डिवोटी मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसा शरीर छोड़ना चाहता हूँ कि मेरे को मेरा जो सर है, एक भक्त का नाम लिया कि उनके गोद में होना चाहिए और बस तुलसी महाराज के सामने हो, उनको देखकर अपना शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तो यहाँ रामानुजाचार्य ने गोविंद के गोद में अपना सर, अंद्रपूर्ण जो उनके शिष्य है उनके गोद में अपने चरण और सामने अपने आध्यात्मिक गुरु के जो खड़ाव है वुडन शूज, खड़ाव जो हम पहनते हैं शूज चप्पल, उसको सामने रखा और उसको देखकर रामानुजाचार्य इतने महान आचार्य राम अनुसाक्षर लक्ष्मण है, उन्होंने अपने शरीर का त्याग करते हैं। फिर हरिदास ठाकुर की तो क्या कहना, हरिदास ठाकुर कैसे शरीर त्यागते हैं, हृदय धर्म तोमार कमल चरण नयन देखि तोमार चांद वदन, हृदय में आपके चरण कमल धारण करना चाहता हूँ, नयनों से आंखों से आपके चांद मुख चंद्र को देखना चाहता हूँ, जीवाय उच्चारिमु तोमार श्री कृष्ण चैतन्य नाम यही मत मोर इच्छा छाड़ी मुकरा, यही मेरी इच्छा है, इस प्रकार से मैं अपना प्राण को त्यागना चाहता हूँ। हाँ, जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम शुकदेव गोस्वामी के सामने अपनी मृत्यु का प्लान हम वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित, और हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सारे मित्र परिवार बंधु ये सब मेरे इर्द गिर्द होंगे और मेरे छाती पर सर दे दे के रो रहे होंगे और उनके मुख कमल को देख के मैं मरना चाहता हूँ, नरक जाएगा सीधा नरक लोग हाई पे निरय दामी भक्तों ठाकुर के हाई पे हो जाएगा वो नरक वासी धाम वासी वैकुंठ वासी नहीं होगा नरक वासी। तो कई बार हमें लगता है अरे मरना चाहिए तो उसका मृत्यु अच्छा जो परिवार के बीच में मरता है, शास्त्र कहते कदापि ऐसे मत सोचो, शास्त्र में इतना वर्णन आया है कि व्यक्ति को ऐसे सोचना चाहिए बल्कि मैं अलग किसी एक जगह अकेले मर जाऊं, हाँ लेकिन कभी भी जो अभक्त लोग हैं चाहे परिवार के लिए जो लोग भक्त नहीं है, भक्त हो तो अच्छा है थोड़ा वो जान सकते नाम कीर्तन करेंगे और दूसरे भक्तों को बुलाएंगे थोड़ा कीर्तन कथा कराएंगे उसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके बीच में है शरीर त्यागना बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो शास्त्र कहते हैं कि कई उसमें वर्णन आता है कि जहाँ भक्त कहते हैं कि मैं तो दूर जहाँ कोई मुझे देख ना पाए ऐसे भौतिक संग से दूर क्या करो, मैं अपने शरीर को त्याग, कितना कठिन है। भरत महाराज थोड़ा सा प्रेम हो गया था किससे, किरण से, डियर ये डियर हो गए डियर, तो वो डियर था वो बहुत डियर हो गया था, उसे इतना लगा हो गया इतना चिंतन होने लगा कि वो डियर का स्मरण करते हुए क्या बने आगे, वो डियर ही बने मुर्गी बन गए। तो उस प्रकार से डेथ प्लान क्या है, कि चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, मैं आपका निरंतर गुणगान करूँ, निरंतर स्मरण करूँ और वैसे अपने शरीर को त्यागो। भक्ति विनोद ठाकुर की एक बहुत अच्छी प्रेयर है, और वो जरूर याद करनी चाहिए सबको। वो उस श्लोक का ट्रांसलेशन है, न धनम न जनम न सुंदरे का बंगाली में, कृष्ण तव पद युगे मोर निवेदन, ये उसकी पहली लाइन है। नाई मांगी प्रेम धन, कृष्ण तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जान, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी, न लागी प्रार्थना को न विभूति लागी। वो कहते हैं तो बहुत सुंदर प्रेयर है और वो आइडियल प्रेयर है, उसको कंटस्थ होना चाहिए भक्तों को, क्योंकि जब इन प्रेयर्स को हम कंटस्थ करते हैं, उच्चारण करते हैं, उस भावना का विकास होता है। इस प्रकार से ग्लोरियस है श्रीमद् भागवतम, और शुक्रदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जीवन भी बहुत महान है। और प्रभुपाद ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है श्रीमद् भागवतम के प्रति विकास करने का। रोज श्रीमद् भागवतम को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्पर्श करेंगे, बोलते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब श्रीमद् भागवतम से आपका प्रेम उत्पन्न हो गया, कब आकर्षित हो गया श्रीमद् भागवतम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई और कुछ नया कुछ नहीं करना है, इन्हीं कार्यों को बारंबार करते रहो, रिपीटेडली परफेक्शन। इसलिए तो कहा अभ्यास वैराग्य ने चुप रहते, यही अभ्यास है। इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों क्वालिफाइड वक्ता हैं और दोनों भागवत की महिमा को जानते हैं, और दोनों एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कृष्ण का स्मरण और बढ़ाने के लिए। क्योंकि कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो सबसे पहले ये अनुभूति होती है, श्रवण के कई रिजल्ट है, उसमें से पहला है कृष्ण मेरे स्वरूप है, इस जगत में मेरा वेल विशर कोई और नहीं है, वो कौन है, कृष्ण। इसमें फिक्स हो जाते हैं, कृष्ण असली वेल विशर है, कृष्ण असली स्वरूप है। और दूसरा क्या, कृष्ण के प्रति हमारे लाइफ में प्रायोरिटी आ जाती है श्रवण करने से, रेगुलर कृष्ण के लिए प्राधान्य प्रायोरिटी लाइफ में आ जाती है। नहीं तो श्रवण कम हो जाता है तो प्रायोरिटी बाकी चीजों के लिए प्राधान्य आ जाता है लाइफ में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सबसे पहले करना चाहिए। कृष्ण भक्ति बाद में, कृष्ण नाम कृष्ण सेवा बाद में, वो ये जब श्रवण कम होता है तो ये सारी चीजें आती है। हाँ, तो पहला तो है कि सुरुद है कृष्ण, दूसरा ये स्थापित हो जाता है कि कृष्ण मेरे लाइफ में सबसे पहले है, प्रमुख है, प्राधान्य है। और तीसरा है कि हम सदैव उत्साहित रहते हैं, हम इंस्पायर्ड रहते हैं, सदैव हमें उत्साह रहता है कृष्ण भक्ति करने के लिए, हम कभी निरुत्साहित नहीं हो सकते। और कभी आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, जब आप अधिक से अधिक श्रवण करोगे, कृष्ण का गुणगान करोगे, आप कृष्ण के संग हो, भक्तों के संग में हो। जैसे प्रभुपाद जब पहली बार न्यूयॉर्क टेम्पल से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे, तो भक्त दुखी हो गए कि आपका आप हमसे दूर जा रहे हैं, आपसे हमें कष्ट होगा, हम आपसे दूर रहना हमारे लिए असंभव है। प्रभुपाद ने कहा हम कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, यदि आप लोग क्या करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे वैष्णव से और कृष्ण से। लोनलीनेस एकाकीपना कोई स्थान नहीं है, जब आपने आपने आपको डाला है कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण के श्रवण आदि के कार्यकलापों में। हाँ, तो जब श्रवण आप निरंतर करते रहोगे तो निरंतर आप उत्साहित रहोगे, प्रेरित रहोगे, हम इंस्पायर्ड रहोगे इन कार्यों को और करने के लिए। इसलिए हमें गोवर्धन का स्मरण करना चाहिए, जैसे वो भोजन हम उनको ऑफर होता है तो क्या कहते हैं, अन्य और अन्य और अन्य और, वो कभी संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए, वैसे हमें होना चाहिए, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत क्लासेस अटेंड कर दी, भागवत हम बहुत पढ़ लिया, 10 साल हो गए हैं, 10 साल में एवरीडे ईच क्लास हम बाकी स्पेशल डिफरेंट क्लासेस तो कितना श्रम के बहुत हो गया भी नहीं ज्यादा भक्ति नहीं आती भक्ति छोड़ी लक्षण कई बार भक्तों कहते हैं ना ज्यादा भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए ठीक है दिखावा नहीं करे लेकिन भक्ति में कार्य में लगे रहे हम तो ये सरल कार्य है सरल हृदय से उसको स्वीकार करना होगा सरलता से कृष्ण हमारे हृदय में निवास करने लगेंगे हरे कृष्ण भद्राश्रीमद्भागवतम् के पतितपावन श्री प्रभुपाद के